ओम शांति। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख नाम बाला करने वाले, लौकिक व अलौकिक का बैलेंस रख फरमान बरदार हमारे भ्राता मोहन सिंगल जी हम सबके बीच हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देहरादून में बाल्यकाल बिताकर आपने अपनी लौकिक पढ़ाई को 1967 में लखनऊ में संपन्न किया। उसके उपरांत आपने लौकिक सेवाएं भी की। 28 वर्ष सेवा करने के पश्चात आपने स्वयं को सन 1996 में बाबा के हाथों में सौंप दिया। सन 1961 में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपको बाबा का परिचय मिला और सेवाओं में स्वयं को व्यस्त रखने लगे। सन 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपको 12 पदयात्राओं का निर्देशन किया। 1992 में भारत सरकार द्वारा आपने पर्यावरण श्री का सम्मान प्राप्त किया। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस तथा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट्स द्वारा वर्ष 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान में आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के पद पर कोऑर्डिनेटर के पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप साकार बाबा के संग रहे। साकार बाबा को अंत समय में आपने बहुत नजदीक से देखा तो बाबा की जो कर्मातीत अवस्था थी आपने उसका बहुत गहन अनुभव किया। तो आज भाई सब हमको सुनाएंगे आपात परिस्थितियों का सामना कैसे करें। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। बाप दादा, हम बच्चों को प्रतिदिन ज्ञान के नए नए गहनों से सजाते रहते हैं और हम बच्चों को संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में देखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा ज्ञान की सभी बातों को, गुह्य से गुह्य बातों को भी बड़ी सहज रीति से स्पष्ट करके हम बच्चों के सम्मुख रखते जाते हैं। बाबा ने आज की मुरली में भी बड़ा सहज बहुत अच्छी बात बताई और जो आज के विषय से भी बहुत लगती हुई है। आज का स्लोगन भी, क्या स्लोगन था आज का? सत्यता और निर्भयता की शक्ति की बात जो बाबा ने कही। आज का जो विषय दिया गया है कि आपदा ग्रस्त परिस्थितियों का भी हम कैसे सामना करें, सफलतापूर्वक सामना करें। कोई भी आपदा आती है, सामना तो करना ही पड़ता है, हर व्यक्ति सामना करता है, लेकिन सदा खुश रहते हुए, मुस्कुराते हुए और इस बात का बुद्धि में अटल निश्चय रखते हुए कि सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कल पहले भी हम इस आपदा में से पार हुए थे सफलतापूर्वक, अब भी हो रहे हैं और कलप कलप होते रहेंगे, बस इस तरह हम खुश खुश होकर के उस आपदा को पार कर सकें। बाप दादा यही चाहता है, क्योंकि संसार में परिस्थितियां तो सबके सामने आएंगी, लौकिक हों अलौकिक हों, कोई भी हो, बाबा को पहचाना हो न पहचाना हो, लेकिन जैसे गीता में भी है कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति यथावत रहे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा इस रेफरेंस में भी, बाबा भी उदाहरण देता है फूलों का, फूल जैसे खुशबू देता है, खुशी का प्रतीक है, मुस्कुराहट का प्रतीक है, तो इसी बात को गीता की भी किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि फूल फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो जीवन में कई बार हम बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी सफलता हम चाहते थे उतनी नहीं मिली, देखने में कभी कभी ऐसा स्वरूप होता है कि जैसे सफलता पूरी नहीं, लेकिन वास्तव में वो भी एक सफलता की पहली सीढ़ी है। देखने में भले हार जैसी लगे, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते रहना बस, और अल्टीमेटली अंतिम सफलता तो हमारी निश्चित है ही। तो आपदाग्रस्त परिस्थितियां, बाबा ने देखो हम बच्चों को सभी आने वाले पेपर्स पहले से ही बता दिए, जो जो पेपर हम बच्चों के सामने आने वाले हैं, आ रहे हैं और भी आएंगे जैसे जैसे समय नजदीक होता जाएगा, और उन सब में अनेक पेपर हैं हमारे। बाबा ने कहा है पांच विकारों का पेपर, सूक्ष्म संस्कारों का पेपर, प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर, कुछ ईविल सोल्स का पेपर आदि आदि कई प्रकार के पेपर्स बाबा ने बताए। लेकिन ये पेपर जानते हुए भी अब हमें कैसी तैयारी करनी है, क्योंकि दुनिया में भी पेपर्स तो होते हैं। लौकिक में जब स्टूडेंट पेपर देने जाता है तो वो पेपर और हमारे पेपर्स में क्या अंतर है? लौकिक में जब स्टूडेंट कोई भी परीक्षा देने जाता है उसे सब मालूम होता है किस दिन कौन सा पेपर है, किस जगह में है, कौन से हॉल में है, कितने समय का पेपर है, कितने घंटे तक किस एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, सब कुछ मालूम है। सिर्फ वो नहीं मालूम होता क्वेश्चन कौन से आने हैं, बस प्रश्न नहीं मालूम होता। और हमारा जो है इससे बिल्कुल उल्टा है एकदम। हमें क्वेश्चन मालूम है कौन सा पेपर आएगा, कब आएगा, लेकिन न हमें स्थान का मालूम है, न तारीख का मालूम है, किस दिन पेपर आएगा, कब आएगा, कितने समय का आएगा, लेकिन क्वेश्चन सारे मालूम है कौन कौन सा पेपर आएगा। ये फर्क है लौकिक दुनिया के और हमारे पेपर्स के अंदर। तो आज का वैसे सब पेपर्स के हम सभी अनुभवी हैं, विकारों का पेपर जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं पार करते चले आ रहे हैं, सूक्ष्म स्वभावों का, संस्कारों का पेपर। लेकिन आज जिस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे वो आपदाग्रस्त परिस्थिति का पेपर, क्योंकि और सब पेपर्स तो प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनते हैं, वो सब से हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उन सब के अंदर सुबह से शाम तक पेपर आते भी हैं और हम सफल भी होते हैं। लेकिन ये जो विशेष प्रकृति का पेपर है जो हमें खास बोला गया है जिस पर बताने के लिए, ये प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर, ये एक बहुत भारी पेपर है। और ये पेपर ऐसा है कि बिल्कुल जिसे बाबा ने नाम दिया हुआ है, कौन सा, किसके लिए, इसके लिए शब्द क्या बोला है जो बाबा हमेशा बोला है, अचानक कोई भी आपदा आती है दुनिया के सामने, अर्थक्वेक आया, जमीन हिली, कोई सुनामी आ गई, कोई एकदम भूचाल के साथ फ्लड तूफान आ गया हवा का, ये सब पेपर बस एकाएक ही आते हैं और ये भले थोड़े समय के होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, जीवन में अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी पेपर जब आए तो बाबा ने उसका अंतिम साधन भी बताया है, उसका साधन सफलता का कि अति हलचल, बाहर बहुत हलचल हो, अति हलचल में अति अचल रहना, ये हम बच्चों का सफलता का साधन है। तो एक तो हम सब बच्चों का ये लक्ष्य रहे कि बाहर जितनी भी हलचल हो मुझे अपने अंदर अचलता का गुण धारण करना है। और साथ साथ क्या करना है, एक एक पेपर जो बाबा ने बताया, दो इन जनरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या दूसरी कोई भी आपदा आती है, या तो प्राकृतिक होती है या मनुष्य के द्वारा पैदा हुई आपदा होती है, तो ये प्राकृतिक आपदा जो है इन सब का हमें सामना करने के लिए कुछ तो स्थूल तैयारियों की आवश्यकता होती है और कुछ अंदर की सूक्ष्म तैयारियों की। तो बहुत स्थूल तैयारियों के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आजकल सरकार भी और अलग अलग जो व्यक्ति हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, सब अलग अलग बातें बताते रहते हैं और वो सब तो नॉलेज में होगी ही। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मानो भूचाल आए, अर्थक्वेक आए, एकदम सडनली आएगा, उसके लिए क्या स्थूल तैयारी करनी है, कुछ कर सकते हैं? एक सेकंड पहले भी नहीं मालूम होता कि भूचाल आने वाला है, आ जाए क्या तैयारी करेंगे उसके लिए? कोई भी आपदा अगर आती है तो तीन प्रकार की उसमें तैयारियां होती हैं, एक कोई आपदा से पहले, एक दूसरी आपदा के समय और तीसरी आपदा के बाद। मानो अर्थक्वेक आने वाला है, मालूम है कभी भी आएगा, बाबा ने बता रखा है प्रकृति की हलचल बहुत होगी, उसके लिए पहले से क्या तैयारी करी जाए? स्थूल में तो बताते हैं भाई मकान बनाओ तो अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाओ, आजकल ऐसे होते हैं बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं कि छोटे मोटे अर्थक्वेक को वो झेल जाते हैं, बिल्डिंग गिरती नहीं है। या फिर साथ में लौकिक रीति से बताया जाता है इंश्योरेंस करा के रखो आदि आदि, लेकिन जब हलचल अर्थक्वेक भूचाल अगर आ जाए तो क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो पैनिक नहीं होना, एकदम मन के अंदर बहुत हलचल में परिस्थितियों के वशीभूत होके नहीं आना है, अंदर ही अंदर मानो आप कमरे में हो, भूचाल आ गया क्या करेंगे? कमरा जब होता है तो बिल्डिंग गिरती है, तो गिरने के वक्त दीवार वगैरह और वो छत वो गिरते हैं, लेकिन बिल्डिंग कोना जो होता है वो कोने सबसे बाद में, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो एकदम कोने में चला जाना चाहिए, कोने में खड़ा हो जाना चाहिए, या मेज होती है टेबल, मेज के नीचे घुस जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर कोई भी चीज गिरेगी बिल्डिंग वगैरह तो मेज के ऊपर गिरेगी, नीचे आप सेफ्टी में रहेंगे आदि आदि। मानो बाहर कार में या स्कूटर में जा रहे हैं, बाहर हैं तो एक तरफ रोड के गाड़ी को रोक के एक तरफ हो जाए, क्योंकि जितनी हलचल होगी जमीन के अंदर उतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा साधन जो गाड़ी चला रहे हैं, इसीलिए उसे रोक के तुरंत एक तरफ हो जाना चाहिए आदि आदि। ये तो बहुत अनेक अनेक इसके लिए बहुत लिटरेचर उपलब्ध होता है, सरकार की तरफ से फ्री भी उपलब्ध कराया जाता है, और हर शहर में हर जगह ये आपदा प्रबंधन के जो एजेंसीज होती हैं वो ये सब देते हैं। इसीलिए इन बातों पर तो दुनिया वाले भी बहुत बताते हैं, इस पर तो मैं विशेष नहीं बताना चाहूंगा, ऐसी तूफान का, साइक्लोन का, फ्लड का, सुनामी का क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसके बाद भी क्या रखनी चाहिए वो पूरे के पूरे मिलते हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए जो बाबा ने बताया है कि किस प्रकार से हम उसकी आंतरिक सूक्ष्म तैयारियां और कैसी करें कि बस एक तरफ अति हलचल हो, सब कुछ हो, लेकिन बाहर वाले बस एकदम हलचल में आएंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे और बाबा ने कहा है बाहर वाले चिल्लाएंगे और आप चलेंगे। चलेंगे माने अब देह तो छोड़ना ही है, लेकिन अंतमते सो गति के अनुसार उस समय हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी हो कि बस ओपनली बोले बाबा हम आए आपके पास आ रहे हैं, बाहर शरीर में जितनी हलचल हो बाहर की, लेकिन उसकी अनुभूति ना हो। बाहर जैसे ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर काटेगा भी शरीर को, खून भी निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस समय पेशेंट को अनुभव नहीं होता, सेंसेस जैसे उससे विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो तो एक स्थूल साधन होते हैं, कोई एनेस्थीसिया दिया, क्लोरोफार्म दिया, कोई बात हुई, उससे जैसे डिटैच हो जाते हैं, उसका सेंसेशन नहीं होता। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ऐसा विधि बताई है कि किस प्रकार से हम अपने को उस समय डिटैच करके रखें कि बाहर शरीर में बहुत चोट लग रही हो, खून हो, हाहाकार हो, सब हो, लेकिन हम इससे डिटैच हो करके सब हो रहा है, लेकिन हमें उसके दुख की अशांति की अनुभूति ना हो, उससे न्यारे होकर के हम चले। और हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, और खाली रहने का ही नहीं, बाबा के अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का। तो किस प्रकार से बाबा ने भी प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करके बाबा सबसे छुट्टी लेकर के, विदाई लेकर के चले, वो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहूंगा। आज भी बाबा ने जैसे बताया सत्यता और निर्भयता की शक्ति, तो बाबा ने बताया चारों तरफ जैसे विनाश की ज्वाला होगी, अग्नि होगी, जब ऐसी परिस्थिति आएगी चारों तरफ तो उस समय क्या करेंगे। बाबा ने कई बार मुरलियों में अलग अलग बताया है, चार प्रकार की अग्नि का उस समय विशेष करके हरेक को अनुभव होगा। पहली है विनाश की अग्नि, चारों तरफ कहीं एटम बम बम छूट रहे होंगे, कहीं पर प्राकृतिक हलचल होगी, कहीं पर पुराने संस्कार, वो सारे के सारे अब वो अपना असर दिखाएंगे। विनाश की अग्नि चारों तरफ होगी, ऐसे विनाश की अग्नि बाहर का विनाश जो होगा उसकी अग्नि में उसके बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाबा ने बताया विनाश की अग्नि से बचने के लिए क्या करना पड़े, विनाश की अग्नि से बचने के लिए बाबा ने कहा है बस बच्चों को एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, ये बस विनाश की अग्नि से बचने का एक साधन है। हम सब बाबा हम आपके पास आए, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा का भी ये अनुभव रहा। तो एक तो है विनाश की अग्नि, बाबा ने कहा लोग चिल्लाएंगे और हम चलेंगे, ये अनुभव होगा, दुनिया वाले भी अनुभव करेंगे, हम अपने को तो अनुभव होगा ही। दूसरा है विकारों की अग्नि, ये भी चारों तरफ विकारों की अग्नि से बचने का क्या साधन है, अगर हमारे अंदर कोई अंश का वंश भी रहा हुआ होगा कोई भी विकार का, अभी हम लोग बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, हम सबको अनुभव है, पवित्र भी बन गए, बाबा ने कहा है ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मचारी पवित्रता को धारण किया, और उसी बात को बाबा ने इस मुरली में भी परसों बोला, फॉलो फादर, ब्रह्माचारी बनना है, बाबा के कदम पर कदम रख के जितना हम चलते रहेंगे उतना बस विकारों की अग्नि ये चारों तरफ इतना एमर्ज होगी, चारों तरफ अंदर में थोड़ा भी अंश रहा हुआ होगा तो वो अंश भी बहुत बड़े वंश का रूप धारण कर लेगा। इसलिए बाबा ने कहा है इससे बचने का साधन है अपने आदि और अनादि वंश को याद रखो। कौन सा हमारा आदि स्वरूप, और अनादि स्वरूप कौन सा है? अनादि स्वरूप तो बाबा ने बताया परम धाम, हम सब आत्मा, चैतन्य आत्मा, और जो आत्मा का बाबा ने बताया है ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो सब ये अनादि। और आदि स्वरूप कौन सा है? देवी देवता स्वरूप। बस वो अगर जितना बुद्धि में रहेगा ना, तो ये विकारों की अग्नि कोई अंश भी अगर आएगा वार करने के लिए, उसका कोई भी वार हमारे ऊपर नहीं होगा, हम सफलता पूर्वक उस पेपर से पार हो जाएंगे। तीसरा बाबा ने बताया है लगाव की अग्नि। एक है पहली अग्नि कौन सी बताई बाबा ने? विनाश की, दूसरी विकारों की, तीसरी लगाव की अग्नि। कौन सा लगाव? देह का लगाव, पदार्थों का लगाव, संबंधों का लगाव, ये सब जैसे हमें अपनी तरफ खींचेंगे न चाहते हुए भी, अगर उनके साथ हमारा, क्योंकि सबके साथ संबंध तो रहता ही है, बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहते हुए भी कैसे न्यारे और प्यारे बन के जियो, लेकिन हम अगर उतना न्यारे और प्यारे हो करके अगर नहीं हमारा व्यवहार रहता है, तो ये अग्नि हमें सब तरफ अंत समय में बहुत बहुत खींचेगी। तो इसके लिए बाबा ने क्या बताया है? बस कोई भी, क्योंकि ये सब संसार की चीज है, तो बाप को अपना संसार बना लेते हैं, बाबा को अगर अपना संसार हम बना लें, तो फिर इस अग्नि का, लगाव की अग्नि का कोई भी असर नहीं होगा। बस बाबा आप ही हमारे संसार हो, बाबा बस हम आपके साथ चले के चले, बाबा आप जो है, कल पहले भी आपने हमें विजयी बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, और इसी प्रकार से हम कलप कलप के विजयी बनते रहेंगे। इतना निश्चय कहने की बात ना हो, अंदर में अगर ये निश्चय होता है, अगर बाबा ही हमारा संसार हो गया, तो बस फिर कोई भी ये लगाव की अग्नि हमें अपनी तरफ नहीं खींच सकती। और चौथी अग्नि है बाबा ने जो बताया है, वो अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। पश्चाताप कब होता है? किसी भी चीज में, लौकिक में भी पश्चाताप कब होता है? हम सभी अनुभव है, कब होता है पश्चाताप? कब होता है? जब कोई प्राप्ति की हमें इच्छा होती है या आशा होती है और वो नहीं होती है, अप्राप्ति होती है, तो पश्चाताप होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा दुनिया वाले तो ना फिर भी वो रोएंगे, पश्चाताप होगा, वो पानी के आंसू से रोएंगे, लेकिन मेरे बच्चे जिन्होंने पहचाना भी भगवान को, लेकिन पहचान के भी कुछ बच्चे जो अपने, जो बाबा ने बताया है उतनी वो प्राप्ति अगर नहीं कर सके, तो हो सकता है खून के आंसू भी रोने पड़े। उसका भाव क्या है कहने का? जानते हुए भी सब, लेकिन फिर भी अगर हम अगर वो प्राप्ति नहीं कर पाते, तो अंत में पश्चाताप होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए बाबा ने बताया है कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। जितना हम प्राप्ति स्वरूप बनते जाएंगे, तो अंत में बस कोई अप्राप्ति नहीं होगी, तो पश्चाताप भी नहीं होगा। इस कारण से जो जो बाबा ने बताया, जैसे अभी बाबा ने संतुष्टता की शक्ति, प्राप्ति स्वरूप वो ही संतुष्टता का एक दूसरा नाम है। बस हर हाल में संतुष्ट रहें, प्राप्ति जितनी है परसेंटेज में, तो पूरा सतयुग के आदि से लेकर अभी तक भी हर चीज परसेंटेज में तो होगी, वहां पर भी राजा को जो प्राप्ति होगी प्रजा को प्राप्ति से भिन्न तो होगी ही, लेकिन कोई भी प्राप्ति से वंचित नहीं होगा, खाली नहीं होगा, परसेंटेज में तो फर्क हो गई। इसीलिए बाबा ने बताया है पश्चाताप स्वरूप ना हो। और ये आपदाएं जो है ना, चूंकि ऑल ऑफ ए सडन आएंगी, आती हैं, और एकाएक ही बाबा ने कई बार बताया है कि एकाएक अचानक में ही, हाँ, सडन डेथ, समूह मृत्यु और जो है अचानक मृत्यु, जब ये पार्ट और बहुत गहरे चलेंगे तो इस कारण से क्या होगा, उस समय पश्चाताप होना स्वाभाविक है। मानो हमने कोई प्लान किया हुआ है, हम चलो ये विल करके जाएंगे, ये धन सेवा में या ये चीज जो भी चीज है, कोई प्लान किया है, लेकिन उससे पहले ही कोई आपदा आ गई तो वो पश्चाताप ज्यादा होगा। अरे हमने सोचा भी था लेकिन समय पर नहीं कर पाए, तो वो एक पश्चाताप का कारण बन जाएगा। तो इस कारण से जैसे दादी जी भी हमेशा कहते हैं, जानकी दादी जी विशेष करके, जो कल करना है आज कर लो, आज करना है अभी कर लो, तो जिससे पश्चाताप की अग्नि में हमें जलना न पड़े। तो इस कारण से एक ये बात है, ये तो है स्थूल की बात। अब सूक्ष्म तैयारियों की और कैसे आवश्यकता है, वो कि प्रकृति जीत हम बन जाए। बाबा ने बताया है योग है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सब रोज हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, धारण भी कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भी पवित्र बना रहे हैं, विश्व में वाइब्रेशन भी फैला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को हम कैसे ऐसा बना लें हमारा साथी कि प्रकृति में जितनी भी हलचल हो वो हमारे दुख अशांति का कारण ना बने, हमारी मृत्यु का कारण ये प्रकृति न बने। हम इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की तरह, हाँ बाबा बस, भीष्म पितामह का गायन है ना, इच्छा मृत्यु थी, ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा की तरह। हमें याद है 18 जनवरी को मुरली हम सब लोग सुन रहे थे, हमें सौभाग्य जैसे बताया, हम बहुत दूर थे, आसाम में थे, और 17 जनवरी को यहाँ आ गए बाबा के सम्मुख, और बहुत बार बाबा से पहले मिले थे साकार बाबा से, लेकिन ये 17 और 18 जनवरी को बाबा का देखा, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति स्वरूप देखा, बिल्कुल जैसे लाइट का फरिश्ता बाबा देखा बाबा का। और 18 तारीख को बाबा ऐसी मुरली चला रहे थे, हिस्ट्री हॉल जो आपने देखा होगा ऊपर मधुबन में, सामने बाबा बैठ के मुरली चला रहे थे, हम सभी लोग सुन रहे थे मुरली। बस मुरली में बाबा ने बहुत बालक की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी पहले एक दो दिन, लेकिन उस मुरली में देखा बाबा को, एक बार भी न कोई खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं, इतना फ्लॉलेस मुरली चलाई बाबा ने, इतना जो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं तो शरीर के जो कोई रोग होते हैं, जो व्याधियां होती हैं, उनके ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल कुछ भी वो नहीं। और बाबा ने जैसे पूरा फोर्स से मुरली चलाई, बाबा उठे, उठ के बाबा कमरे के बाहर गए, बाहर तक जाते जाते बाबा दो तीन बार रुके, हर बार रुक के फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे बाबा, बस फिर एक कदम आगे बढ़े, फिर रुके, फिर घूम करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि दे बाबा, बाबा को यही हो कि बस शिव बाबा को कि साकार के द्वारा तो आज मेरा अंतिम मिलन है, साकार ब्रह्मा के थ्रू उस शरीर के द्वारा, इसलिए बच्चों को मैं भर दूं संपूर्ण रीति से अच्छी तरह। बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते रहे, दिया, फिर बाबा गए और बस क्लासरूम के बाहर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, बाबा विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोले, उसी दिन ही छुट्टी लेता है, विदा लेता है, जैसे बस भीष्म पितामह का साकार कि हाँ बस बाबा अब जा रहा है। यही आप बस, हम बच्चों को भी ऐसी स्थिति को पाना है कि जब हम जाएं, एकाएक ऐसे ही नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन भाई ये काम रह गया, ये करना बाकी है, ऐसा होना नहीं, सब निपटा के उस दिन बाबा ने भी कहा आज जो भी पेपर हो साइन कराने हो करा लो, ईशु दादी को बोला जितने भी पत्र पड़े हों पेंडिंग, पत्रों का जवाब बाबा रोज देते थे, बस सारे पत्र लिखवा लो, हर चीज सारे दिन भर, जैसे दिन यही आभास रहा कि बाबा को आभास हुआ कि बस अब इस शरीर से मेरा पार्ट पूरा हुआ, अब जा रहे हैं। यही हम बच्चों की भी स्थिति होनी चाहिए। अब बस बाबा कह के गए और बाबा फिर कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए सारी अपनी विल्स को दान देते हुए दादी जी को बाबा ने छुट्टी दी। लेकिन असली आश्चर्य की बात तो उसके बाद भी देखी, बाबा का शरीर 18 जनवरी की शाम को बाबा ने शरीर छोड़ा, रात भर शरीर रखा रहा, 19 को सारा दिन भर रखा रहा, 19 को रात को, 20 के दिन 20 की रात को और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, लगभग 65 घंटे के बाद भी। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही बिल्कुल चमकता हुआ, न शरीर कोई काला हुआ, न कोई डिसइंटीग्रेशन बॉडी का हुआ, नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है जैसे, बिल्कुल बाबा का ऐसा ही शरीर वही चमकता हुआ लगता था जैसे बाबा उठेंगे हमेशा की तरह। और बाबा से जब मिलते थे, बाबा यही, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, और हम लोग जैसे खींच करके बाबा की बाहों में चले जाते थे, ऐसा चुंबकीय आकर्षण था, क्योंकि बाबा ने आत्मा का अभ्यास इतना पक्का करा हुआ था। हर व्यक्ति को देखते थे और जो भी बाबा के जाता था बाहों में, तुरंत विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था, क्योंकि बाबा का अपना अभ्यास इतना पक्का था। तो बिल्कुल वैसा ही स्वरूप, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद 60-65 घंटे तक न कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कोई दवाई कुछ नहीं, हम तो वहीं पर थे देखा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही। तो ये है प्रकृति पर विजय पाने का लक्षण, प्रकृति जीत बाबा बना। तो हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है, तो कैसे बने वो अब हम सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के एक एक तत्व के ऊपर विजय पाई बाबा ने। तो बाबा का शरीर जब बिल्कुल ऐसा रहा, और हम सब भी यही चाहते हैं, हमारे भी सबका इच्छा मृत्यु हो, मृत्यु तो होनी है, शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे आपदा में छोड़े चाहे कैसे भी छोड़े, लेकिन अभी चूंकि बाबा ने कहा है तत्वों का हम अति हलचल होंगी, आपदाओं का बाजार गर्म होगा, यानी बहुत चारों तरफ, अभी तो एक आपदा आती है तो चलो दुनिया वाले मदद करते हैं, कहीं अर्थक्वेक आया एक देश में या दूसरे देश में, दूसरे मदद कर देते हैं, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आनी है दुनिया में चारों तरफ, कहीं अर्थक्वेक भी आएगा, फ्लड भी आएगा, कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं पर साइक्लोन आएगा, तूफान आएंगे, इतनी सब आपदाएं और बहुत जगह एट ए टाइम आएंगी, कौन किसकी मदद करेगा, अस्पताल भी नहीं होंगे वहां पर, कितने प्रकार की ऐसी चीज होगी। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई हुई है कैसे हम प्रकृति जीत बने। मानो हम चाहते हैं कि बस अर्थक्वेक जो है वो मृत्यु का कारण ना बने, हमारे दुख अशांति का कारण ना बने, भूचाल आएंगे, बहुत आएंगे भूचाल, और लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भूचाल के द्वारा हमारी मृत्यु न हो, ये हमारी अशांति का कारण, दुख का कारण न बने, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पृथ्वी तत्व है, धरती है, इसको हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें, क्योंकि मित्र मित्र की सहायता करता है, मित्र मित्र की कभी जान नहीं लेता, प्राण नहीं हरता, तो पृथ्वी को हम अपना मित्र बना लें। कैसे बनाएंगे मित्र, ज्यादातर मित्रता भी किन के बीच में होती है, जिनके संस्कार आपस में एक जैसे होते हैं, मिले जुले होते हैं, उनमें मित्रता होती है। रोज हम लोग क्लास भी करते हैं, आपने देखा होगा, क्लास करके जब बाद में घर जाते हैं हर एक कोई स्टूडेंट, तो बस क्लास के बाद भी जिन जिन से हमारी निकटता है, फ्रेंडशिप है, वो आपस में विशेष क्लास के बाद भी 2-4 मिनट मिलेंगे, हालचाल पूछेंगे, उसके बाद अपने अपने घर सब चले जाते हैं। तो पृथ्वी को मित्र बनाने का भाव क्या है कि पृथ्वी तत्व के हम गुण अपने अंदर धारण कर लें। धरती का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, विशेषता कौन सी है, सहनशीलता, हाँ ये भी है पृथ्वी का गुण, लेकिन सबसे बड़ा पृथ्वी का गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। एक बीज बो दो पृथ्वी में, सिर्फ एक बीज, पेड़ निकल आएगा और हजारों बीज उसमें हजारों फल लग जाएंगे, सैकड़ों फल लग जाएंगे। पृथ्वी हमेशा देती है अनाज, सब्जी, फल, हर चीज पृथ्वी देती है। ऐसे ही अगर हम अपना ये संस्कार बना लें जो बाबा बताता है कि आपके सम्मुख जो भी आए वो खाली ना जाए, उसको हम कुछ ना कुछ जरूर दान करें, शांति, प्रेम, सहयोग, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, कोई इसमें तो खर्चा कुछ होता नहीं। कोई स्थूल चीज अगर हो, अनाज हो, कपड़ा हो, वो चीज के तो लिमिटेड है, लेकिन किसी को शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए उसकी आवश्यकता अनुसार ये चीज का हम उसको दान कर सके। पृथ्वी भी दाता है ना, तो ये जितना हम देते रहेंगे, दान देते रहेंगे, तो जैसे हम पृथ्वी को हम अपना मित्र बना लिया, फिर पृथ्वी हमारे मित्र बन गए, तो चाहे जितनी भी पृथ्वी में हलचल होगी वो हलचल हमारे मृत्यु का, हमारे दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो हमारी मित्र हो गई। पृथ्वी में सहनशीलता का गुण है, ऐसे हमने भी जितना जितना सहनशीलता का गुण अपने अंदर धारण किया होगा वो पृथ्वी के गुणों के साथ जैसे मैच करते चलेंगे। और पृथ्वी के अंदर कितना अचल, अडल, हम भी जो बाबा ने बताया है अपने धारणाओं में, नियमों में, कितने उसमें हमारी अचलता रही है। एक एक गुण को आप देखते रहेंगे तो बस उस गुण के कारण वो तत्व अंत तक आपकी रक्षा करेगा। अभी कलयुग की दुनिया में ही नेट पर हम लोगों ने पढ़ा था, सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया था अमेरिका में, एक है तो वहां पर अर्थक्वेक आया, चारों तरफ बहुत विनाशकारी दृश्य हुए, सब बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, लेकिन एक प्रोफेसर का फार्म हाउस था, उसका मकान बिल्कुल इंटैक्ट था, मकान में कोई कांच भी नहीं टूटे उसके। तो बाद में मीडिया वाले गए और बहुत लोग गए कि आपने किस चीज से अपना मकान बनाया है, हमें भी बताओ। तो उसने कहा नहीं, मेरा तो मकान तो साधारण ही है, कोई इसमें कोई विशेष चीज यूज नहीं करी है। तो फिर ये कैसे है कि चारों तरफ आपके इतना हर जगह मकान टूटे हुए हैं, सब कुछ, लेकिन आपको के मकान को कोई भी क्षति नहीं हुई है। तो उसने बताया कि मैं रोज ना धरती माता के साथ वार्तालाप करता हूं, और वार्तालाप में क्या करता हूं, मैं आदान प्रदान, हे धरती माता आप तो हमारी माता हो, क्या माँ अपने बच्चे को दुख दे सकती है, कदापि नहीं, और आप तो रक्षा करती है, माँ हरेक सदा अपने बच्चे की रक्षा करती है, बस हे माता मुझ में भी आप जैसी धैर्यता दो, आप जैसी सहनशीलता दो, मुझ में भी सदा देने की भावना रखो। मैं रोज धरती माता से अपने फार्म हाउस में बैठ करके वार्तालाप करता हूँ, ये उस प्रोफेसर ने बताया। और ये एक सूक्ष्म बात है वाइब्रेशन की, अभी विज्ञान भी ऐसी ऐसी चीजों को प्रूफ कर रहा है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे पृथ्वी का है ऐसी जल की बात, जल में कौन सा है सबसे बड़ा गुण, कौन सा है, शीतलता, उससे भी बड़ा गुण कौन सा है, जल है फ्लेक्सिबल, एडजस्टमेंट की पावर, हर जगह जल अपने को एडजस्ट कर लेता है। ये गिलास है, इसमें जल डालो गिलास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालो कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में डालो थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच हो चम्मच में सेट हो जाता है, हर जगह उसमें एडजस्ट होने की ताकत है। ऐसे ही हम भी अगर अपना ये संस्कार बना लें कि हम हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके चल सके, हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट होके अगर हम चल सकेंगे ना, तो चाहे जितना भी फ्लड आए, तूफान, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, जितना सुनामी आए, लेकिन वो हमारी मृत्यु का, दुख का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जल जो आ रहा है, जल उसे हमने अपना मित्र बना लिया, और मित्र जो है मित्र की सदा रक्षा करता है। हेल्प करता है उसके प्राण लेने के निमित्त नहीं बनेगा। तो ये जल का भी वैज्ञानिक, ये तो एक थ्योरेटिकल जो बात बताई आपको, लेकिन वैज्ञानिकों ने, एक प्रोफेसर एमोटो करके होके गए जापान में, उन्होंने अभी कुछ साल पहले ही एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया जल का, बड़ा सिंपल। उन्होंने दो गिलास में पानी लिया, एक जैसा गिलास और एक जैसा पानी, सब कुछ वो, और एक गिलास के ऊपर उन्होंने अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजे, बस, और लेबल भी उस पर कागज भी चिपकाए ऐसे कि बस मदर टेरेसा, यानी बहुत मदर टेरेसा का नाम लेते ही बड़ी मन के अंदर बड़ा रेस्पेक्ट की भावना पैदा होती है, एक ऐसी छवि आ जाती है जो बहुत आदरणीय है, आई लव यू, थैंक यू, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, पॉजिटिव शब्द के लेबल उसके ऊपर चिपकाए उन्होंने। और दूसरा गिलास जो लिया उसमें यही हिटलर, एडोल्फ हिटलर लिखा, हिटलर का नाम लेते ही मन में क्रूरता का पिक्चर आ जाता है, और उसमें लिखा आई विल किल यू, आई हेट यू, ऐसे निगेटिव नकारात्मक बातें उसमें लिखी। और ऐसी जो पॉजिटिव वाला था पानी, जिस गिलास में मतलब पानी लिया था और लेबल पॉजिटिव थे, उसमें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दी कि हे जल, आप तो जीवन के दाता हो, आप लोगों के प्यास बुझाते हो, आपके बिना तो जीवन संभव नहीं है, मैं बहुत आपका आदर करता हूँ, और आप तो हमारे शरीर के अंदर भी जल ही जल है, आदि आदि पॉजिटिव, और ऐसे ही दूसरी तरफ नेगेटिव जल की बातें, उनको ये जल आप कई बार संहार कर देते हो, लाखों लोगों के प्राण ले लेते हो, मुझे आपसे नफरत है, और बस ऐसे ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन जल को दिए दूसरे गिलास में, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी भावनाओं का फर्क है अंदर। तो जो पॉजिटिव वाला गिलास था उसके अंदर बड़े ऑर्नामेंटल शेप के वो बने जैसे क्रिस्टल, उसके अंदर उसको बाद में क्रिस्टलाइज किया गया, तो बड़े अच्छे अच्छे क्रिस्टल जो हीरे जवाहरात जैसे अच्छे अच्छे शेप के थे, देखने से ही तबीयत खुश हो जाए। और दूसरा जहां जिस पर नेगेटिव का वो रखा हुआ था, भावनाएं भेजी थी, नेगेटिव लेबल किया था, उसके अंदर बड़े ही भयानक शेप के, इरेगुलर शेप के ही क्रिस्टल बने। तो देखो सिर्फ पानी का है, मैं भावना का ही कितना फर्क, दूर रखे हुए, जब दूर रखे हुए पानी पर इतना असर पड़ सकता है, तो हमारे शरीर के अंदर तो पानी पानी है, 70% पानी है, जो बाबा ने बताया है हमारे अपने मन के विचारधाराओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, डॉक्टर भी आजकल कहते हैं कि जितनी अगर पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी तो शरीर भी निरोगी रहता है, और जितना घृणा ईर्ष्या द्वेष नेगेटिव बदला लेने की भावना आदि ये संस्कार होते हैं तो शरीर में बीमारी का स्वरूप धारण कर लेता है। तो ये ऐसे ही जल का गुण, हम जल का क्या एडजस्टमेंट की शक्ति, वो शक्ति को हम धारण करें। इसीलिए जल जो है सदा आगे बढ़ता रहता है, जल बढ़ रहा है उसके सामने बड़ा पत्थर भी आ जाएगा, रॉक आ जाएगा, जल रुकेगा नहीं, वो यूं घूम घाम के ऐसा ऐसा करके अपना रास्ता बना के जल आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर जल कहीं रुक जाता है तो क्या होता है, उसमें बदबू, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, कीड़े मकौड़े, बदबू हो जाएगी। ऐसे ही हम भी सदा आगे बढ़ते रहें, अगर हम कहीं रुक गए हैं ना तो हमारे अंदर भी घृणा ईर्ष्या द्वेष नफरत रीस की भावना, ये नेगेटिविटी के संस्कार अगर हमारे अंदर अगर आने लगे, ज्यादा बलवती होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारी आगे की प्रोग्रेस रुक गई है, कहीं ना कहीं हमें मार्ग बदलने की आवश्यकता है। एक ये बात है कि जिससे जल के बहुत सारे गुण हैं, मैं तो आपको यहाँ समय के अभाव में एक एक दो दो गुण बताता रहूंगा। जल देखो शीतल है, सुबह उठो हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाता है व्यक्ति, फ्रेशनेस का प्रतीक। ऐसे हम भी ऐसे धारण कर लें, हमारे अंदर ये धारणाएं हो, जो भी हमारे सम्मुख आए बस फ्रेशनेस का अनुभव करें। ऐसे ही पानी का क्या गुण, पानी का गुण हुआ सूर्य का, अग्नि का स्वरूप होता है, धरती पर अग्नि का प्रतीक ये सूर्य है, तो अग्नि, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्व है ना, तो ऐसे ही अग्नि सूर्य से हमें क्या शिक्षा लेनी है, अग्नि में क्या विशेषता होती है, अग्नि में जो चीज डालो कोई भी चीज उसका रूप बदल जाता है। बस ऐसे ही हमारा जो बाबा ने अभी कहा ज्वालामुखी स्वरूप हो, ऐसे योग अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो, लोगों का स्वरूप बदल जाए जो हमारे सामने आया। बाबा ने कहा है अब ऐसी परिस्थिति आएगी रोते हुए लोग आए, हंसते हुए जाए आपके सम्मुख आके, बस दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की डुबकी मारती हुई चली जाए। ऐसा हमारा स्वरूप हो जो अग्नि का होता है, उसका स्वरूप परिवर्तन कर देते हैं, ऐसी अब हमें ये आवश्यकता है। तो अगर हमने ये जो बाबा कहते हैं योग अग्नि ज्वाला स्वरूप स्थिति ये धारण की हुई होगी, अंत में जब ये सब आएंगे और बहुत अग्नि का अति गर्मी होगी, ऐसा गर्मी का स्वरूप सब झुलस जाएंगे, जैसे यही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो संसार की बड़ी से बड़ी समस्याओं का स्वरूप है, वो इसी कारण होता जा रहा है कि धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो इस कारण से अगर हम चाहते हैं कि सूर्य हमारे मृत्यु का कारण न बने, दुख का, अशांति का कारण न बने, वो तब होगा अगर हमने सूर्य का ये गुण धारण किया हुआ होगा। कौन सा? एक तो ज्वाला स्वरूप का और दूसरा सूर्य के तरफ अगर हमारा मुंह होता है ना, तो क्या होता है, हमारी परछाई पीछे पड़ती है। आप सूर्य की तरफ मुंह करके बढ़ो, परछाई पीछे रहेगी, और जब सूर्य एकदम 12 बजे ठीक ऊपर होता है, कोई भी परछाई नहीं होती, वो परछाई पैर के नीचे चली जाती है एकदम। तो बात हो रही थी ये अग्नि तत्व की। तो इस रीति से अगर ज्ञान सूर्य परमात्मा की तरफ भी हमारा सदैव मुख रहेगा तो ये जो छाया है, परछाया है, जो माया, कमी कमजोरी हमारी अंदर की है, जो इस स्वरूप में अंदर है, वो पीछे की तरफ रहेंगी, वो हमें गाइड नहीं करेंगे, वो हमारे बस आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन जब सूर्य की तरफ हमारी पीठ हो जाती है तो क्या होता है, परछाई हमारी आगे आगे चलती है, हम पीछे पीछे चलते हैं। तो ये हमारे अंदर की जो कमी है, कमजोरियां, ये हमें गाइड करती चलती है। तो इस रीति से हम सदा ये देखते रहें कि बाबा की तरफ, ज्ञान सूर्य की तरफ ही मेरा सदा मुख रहे, बाबा की विस्मृति कभी ना हो, उसकी तरफ हमारी पीठ ना हो। तो ये जैसे कि हमारा ज्वालामुखी योग का एक स्वरूप होगा। और इसी प्रकार से ना, और कौन सा तत्व रह गया, वायु, बहुत विनाश का एक कारण, खास करके जो समुद्र के किनारे बसे हुए हमारे बड़े बड़े शहर हैं, विश्व के बहुत बड़े बड़े शहर समुद्र के किनारे, वो सब के अंदर भी एक विशेष कारण ये बनेगा जो बाबा ने बताया। किस प्रकार से साइक्लोन्स, हवा का इतना तेज हवा चलेंगी, बस वो कई 150, 200, 250 कई स्पीड से, 200-250 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चलेगी, आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हो जाएगी, विनाश का एकदम स्वरूप। कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ पर गुजरात में भी, कच्छ भुज में ऐसा हुआ, उड़ीसा में हुआ, साइक्लोन आया। टाइम टू टाइम ये जो साइक्लोन आते रहते हैं, समुद्री तूफान वगैरह, तो बस ये विनाश का एक कारण बन जाते हैं। लेकिन वायु का अगर हमने गुण धारण किया होगा, वायु का कौन सा गुण है, हर एक का अपना अपना गुण बता रहे हैं ना, तो वायु का गुण है हर चीज को ऊपर उठाना, हल्की होती है ऊपर ले जाती है वायु, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। तो ऐसा अगर हमने भी ये गुण धारण किया हुआ होगा हल्के रहने का, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कारण बन जाए, हम अंदर से भारी ना हो, अगर हल्के रहेंगे, जो बाबा ने कहा है, गीत भी है ना एक, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ऐसे ही अगर हम जीवन में सदा हल्के रहेंगे तो क्या होगा, बस चाहे जितना भी साइक्लोन आएगा, तूफान, समुद्री तूफान आएंगे, वायु बहुत तेज स्पीड से चलेगी, लेकिन यह हमारी मृत्यु का दुख का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया, प्राण वायु कहते हैं। देखो, हम जल के बिना, भोजन के बिना फिर भी कुछ जी सकते हैं, भोजन के बिना कहते हैं मनुष्य 5 सप्ताह तक इजीली रह सकता है, जल के बिना भी 5 दिन तक जी सकता है, लेकिन वायु के बिना श्वास रोक के देखो 5 मिनट भी नहीं जी सकते, 1-2 मिनट के बाद ही बस सांस घुटने लगेगा, इतना तेज ये प्राण वायु। इसीलिए कहा जाता है हमारे प्राणों का आधार ये वायु ही है, इसीलिए वायु को हमें ये देखना है, वायु जैसा हल्के रहने का अगर हमने गुण धारण किया होगा, ये हमें बहुत बहुत अंत समय में सहयोगी बनेगी। और 5वां तत्व है आकाश। कितना बड़ा विशाल है आकाश, आकाश की विशालता सब जानते हैं, लेकिन आकाश तत्व को हमने यूज कैसे किया है वैज्ञानिकों ने, किस तरीके से उसमें सैटेलाइट छोड़े हुए हैं और वैज्ञानिक रीति से, और वो अंदर सैटेलाइट जो होते हैं उसके कारण ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टीवी का दूर का दृश्य भी पास में देख सकते हैं, रेडियो से आवाज सुन सकते हैं, मोबाइल, बस हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, 1 सेकंड में ही यहां से बैठे अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, कहीं भी बात कर सकते हैं, वो सैटेलाइट छोड़े हुए हैं कम्युनिकेशन। ऐसे ही आकाश जैसी विशालता हमारे हृदय में होनी चाहिए, अगर हमने इतनी विशालता धारण की होगी, आकाश जैसी विशालता, तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल कभी भी किसी से ब्रेक डाउन नहीं होगी। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध मधुर होते हैं उनसे तो हम घंटों तक बात करते हैं, और जिनसे अगर संबंधों में उतनी मधुरता नहीं होती है, सामने भी कोई आएगा बोलचाल बस उससे रास्ता बचा के निकल जाएंगे, बात करने की दिल नहीं होती है। तो ये अपने को चेक करने का साधन है कि मेरे अंदर अगर ये अवगुण है, इसका मतलब मेरे अंदर आकाश जैसी विशालता नहीं है। और अगर आकाश जैसी विशालता धारण नहीं की होगी तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी विनाश के साधन होंगे, बम होगा, कोई रॉकेट होंगे, कोई अलग अलग, वो हमारे मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इस कारण से आकाश तत्व को अगर हमने अपना मित्र बनाया तो आकाश तत्व अंत तक हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि आकाश का गुण हमने धारण कर लिया। हमें चेक करते रहना है कि सबके साथ हमारे ऐसे संबंध हो, किसी के साथ भी दुश्मनी का व्यवहार न हो, ऐसा व्यवहार न हो, बातचीत कम्युनिकेशन अगर हमारी बंद हो जाती है, ये समझो ये हमारे दुश्मनी का, ये केवल यहीं पर ही नहीं है, ये अंत समय में याद, अधिकतर कहते हैं याद ही दो व्यक्ति आते हैं, या तो जिनसे बहुत बहुत अधिक स्नेह होता है या जिनसे दुश्मनी होती है, ये दो प्रकार के व्यक्ति ही याद आते हैं। तो इसीलिए बाबा ने तो कहा है, अंत समय कोई भी याद ना आए, इस वो तभी होगा अगर हमने आकाश की विशालता को धारण किया होगा। भले हमारे संस्कार नहीं मिलते, स्वभाव नहीं मिलते, उसकी बहुत बातें हमारे मन को कचोटती हैं, गलत हम समझते हैं, फिर भी हमारा उससे बोलचाल बंद ना हो, ये हमें खास देखते रहना है। दूसरा न भी करे, आप जाओ हाँ फलाना बहन जी ओम शांति, फलाने भाई ओम शांति, गुड मॉर्निंग, किसी न किसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन को, कभी भी बातचीत को टूट तोड़ने न दो। ये है विश्व महाराजन बनने का एक और लक्षण, क्योंकि विश्व महाराजन जो होगा उसका तो विश्व की समस्त आत्माओं से ही संबंध होगा। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है, और बाबा का देखो एक एक तत्व का जो जो गुण देखते हैं, हमने तो साकार को देखा अंत समय तक, बिल्कुल कैसे एक एक बच्चे, अनेक स्वभाव संस्कार के बच्चे भी, लेकिन हरेक से बाबा का कैसा कैसा बहुत, इतना हरेक को ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, सबसे ज्यादा प्यार बाबा मुझे ही करता है, ऐसा ही हमसे हरेक को ये अनुभव होना चाहिए, भले वो ज्ञान में हो ना हो, परिवार का एक एक बच्चे से। क्योंकि बाबा ने कहा है तुम बच्चों के सामने एक बड़े से बड़ा पेपर और कौन सा होगा, दो पेपर बड़े होंगे, एक होगा अपने शरीर का पेपर, बीमारी का पेपर, और दूसरा होगा परिवार का पेपर। कोई भी परिवार के किसी व्यक्ति में अगर हम कोई आज कमी कमजोरी देखते हैं, कोई भी बात, तो कई बार हमारे मन में बात आ जाती है, अरे ये इतना 50 साल पुराने, ये 40 साल पुराना भाई, इनमें भी अभी तक ये कमी कमजोरी, इतना क्रोध, इतने ये बात, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये भगवान के चुना हुआ बच्चा है। बाबा ने बताया कि मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना, वो आज के जो महान कहने में आता है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उससे भी मेरा लास्ट का लास्ट बच्चा भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने चुना है। अब भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, मनुष्य का चाहे हो जाए, भगवान ने सिलेक्ट किया है अपने समय पर, उस आत्मा के द्वारा कुछ न कुछ प्रत्यक्षता ऐसी जरूर होनी है कि वो एकदम अपनी महानतम स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएगा वो व्यक्ति। एक एक बच्चे के द्वारा बाबा को ऐसी सेवा करानी है, क्योंकि भगवान का चुना हुआ रतन है। अब भगवान का चुने हुए रतन को अगर हम सोचते हैं, अरे ये कैसा भाई है, ये कैसी बहन है, इसमें अभी तक ये ऐसा, इसका मतलब हम भगवान के सिलेक्शन को चुनौती दे रहे हैं कि हे बाबा आपने इस व्यक्ति को जो चुना है आपने गलत चुना, ये तो इस लायक नहीं है। ये जैसे इनडायरेक्टली हम भगवान के सिलेक्शन को चुनौती दे रहे हैं। तो कोई भी भाई हो, बहन हो, कैसा भी संस्कार वाला हो, हमारी उस पर रहम की दृष्टि, प्यार की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि होगी, तो इसका मतलब हमने भगवान के सिलेक्शन को स्वीकार किया है। हाँ बाबा जो है जैसा है आज अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा और नहीं हो सकता। तो इस रीति से अगर हम चलते रहेंगे, पांचों तत्वों को साथ में लेते हुए, जो बाबा ने बताया, तो ये तत्व जो है आपातकालीन जो स्थितियां आने वाली हैं उनमें ये हमारी आंतरिक तैयारी ही मदद करेगी। बाहर हमने जितनी भी तैयारियां की होंगी ना, वो हमारे बहुत काम में आने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मदद जरूर करेंगी, लेकिन बहुत काम में आने वाली नहीं है। इसीलिए ये अंदर की तैयारियां सूक्ष्म, ये जितना करते रहेंगे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।